जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे Jaya Jaya Prabhupad 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 Nidai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nidai Gaur Premanande Shri Hari Nam Sankirtanam Ke Granthra Srimad Bhagavatam Ke Shri La Prabhupada Ke Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama shloke Bhaktir bhavati naishtiki Krishnaya vasudevaya Devaki nandanaya cha Nandagopakumaraya Govindaya namo namaha Hare Krishna, Srimad Bhagavatam se paath, Skandh, Dasva, Adhyay Sankhya 2, Adhyay ka shirshak hai, Devtaon dvara Garbhast Krishna ki stuti, Shlok Sankhya 31, Kripya dohraiye, Svayam Samutirya Sudustaram Dyuman, Bhavarnavam bhima madabhra saurudah Bhavatpadam boruhanava matrate Nidhaya yata sadanugraho bhavan Svayam samuttirya sudustaram dyuman Bhavarnavam bhima madabhra saurudah Bhavatpadam boruhanava matrate Nidhaya yata sadanugraho bhavan Svayam samuttirya sudustaram dyuman Bhavarnavam bhima madabhra saurudah Bhavatpadam boruhanava matrate Nidhaya yata sadanugraho bhavan Shabdarth Svayam Khud aap Samuttirya Paar karke Sudustaram Durlanghya Dyuman Agyan ke is lok mein अंधक अज्ञान के इस लोक के अंधकार में सूर्य के समान चमकने वाले हे प्रभु भवार्णवम संसार सागर को भीमम भयानक अदब्र सौहृदाः भक्तगण जो पतित आत्माओं के प्रति सदैव मैत्री भाव रखते हैं भवत पदाम्बो रुह आपके चरण कमल नावम पार करने के लिए नाव को अत्र इस संसार में ते वे वैष्णव जन निधाय पीछे छोड़कर याताह चरम लक्ष्य वैकुंठ सदानुग्रह भक्तों पर सदैव कृपालु तथा दयालु भवान आप। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे द्युतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्य ज्ञान अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। चूंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्यगण तथा कृपालु भगवान मिलकर उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों की खोज करे, जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाले व्यक्ति से कृष्ण यह भक्ति स्वीकार करते हैं। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु या आचार्य की शरण खोजता है जो भक्त को परिस्थिति के अनुसार सेवा करने की उपयुक्त विधियों का प्रशिक्षण दे सके, जिससे भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर ले। इससे पात्र को अपने चरम गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होती है। अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ रूप गोस्वामी ने आगे आने वाले भक्तों की सहायता करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्यों का कर्तव्य है कि वे भावी पात्रों को भक्ति करने में सहायक पुस्तकें प्रकाशित करें, जिससे लोग परमेश्वर की कृपा से भगवत धाम वापस जा सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसी मार्ग की संस्तुति की जाती है और इसी का पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी गई है कि वे चार पाप कर्मों से बचे। यह है अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ। उन्हें प्रतिदिन 16 मालाएं जप करने की भी सलाह दी गई है। यह प्रामाणिक आदेश है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में सतत कीर्तन संभव नहीं है, अतः बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु इसी विधि का पालन करना चाहिए। जो लोग अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विविध पुस्तकों में संस्तुत विधि विधानों का पालन करते हैं, कृष्ण उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञान के सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों की नौका बनाने की उपयुक्त विधि आचार्य द्वारा बतलाई जाती है, और यदि पालनकर्ता इस विधि का दृढ़ता से पालन करता है तो वह भगवत कृपा से गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। यह विधि आचार्य संप्रदाय कहलाती है। इसलिए कहा गया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। आचार्य संप्रदाय नितांत प्रामाणिक है, इसलिए इस संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए श्री नरोत्तम दास ने गीत गाया है, तांदेर चरण से भी भक्त सने वास, जनमे जनमे होई यही अभिलाष। मनुष्यों को चाहिए कि आचार्य के चरण कमलों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, तब भवसागर पार करने का प्रयास सार्थक होगा। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने। नमस्ते सरस्वते देवे ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ നമോ മഹാവദാന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമ പ്രദായത്തെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരത്വിഷയ നമ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനോ സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യഃ കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തോ ആപ് സബ് കാ ആജ് കേ രവിവാര പ്രാതകാലീന കക്ഷാ മേ ഭഗവത് കക്ഷാ മേ സ്വാഗത് ഹൈ. തോ ആജ് ഹം പഠ് രഹേ ഹൈ സ്കന്ദ 10 അധ്യായ സംഖ്യ 2 ശ്ലോക സംഖ്യ 31 സേ. തോ പ്രാരംഭ മേ തോ മേ സഭി ഉപസ്ഥിത വൈഷ്ണവ കേ ചരണോ മേ പ്രണാം കർകേ ആശീർവാദ കീ യാചന കർതാ ഹൂം. ഖാസ് കർകേ ശ്രീമാൻ വൃന്ദാവൻ പ്രഭു ഔർ അന്യ ഭീ സാരേ വരിഷ്ഠ ഭക്ത ഏവം സർവഭക്ത താകി ഭഗവത് കേ ഇസ് വിഷയ വസ്തു കേ സാത് ഉചിത വിഷയ വസ്തു കേ ഊപർ ഉചിത ഭാവ സേ കുച്ച് ബോൽ പാഊം. തോ ഇസ് വിഷയ കി ചർച്ച കർനേ കേ പ്രാരംഭ മേ ഹം ദേഖ്തേ ഹൈ കി ഇസ് ജഗത് മേ ഭൗതിക ജഗത് ബഡേ സംഘർഷ കി ഭൂമി ഹൈ. ശ്രീല ഭക്തി സദാനന്ദ സരസ്വതി ഠാക്കുർ കഹതേ ഹൈ കി ഭൗതിക സംഘർഷ മേ ഭൗതിക ജഗത് മേ കഡാ സംഘർഷ ഹൈ. ഭൗതിക ജഗത് മേ ദുഃഖ കേ സാഥ് ഹർ ഹർ സ്തർ പർ സംഘർഷ ഹൈ. തോ ഇസ്കോ സമജ്നേ കേ ലിയേ കോയി ബഹുത് ബഡാ തത്വവേത്താ നഹീ ഹോനാ ചാഹിയേ. ജയ ശ്രീ രാധാ വൃന്ദാവന ചന്ദ്ര കീ, ശ്രീ ഗൗ നിതായ കീ, ശ്രീ ജഗന്നാഥ ബലദേവ സുഭദ്ര മഹാരാണി. തോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി കഹതേ ഹൈ കി ഭൗതിക ജഗത് മേ സംഘർഷ ഹൈ ഔർ ഇസ് ജഗത് മേ ദുഃഖ കേ സാഥ് അന്യാന്യ സ്തരോ പേ ഹം ലോഗ് ജോ സംഘർഷ കർ രഹേ ഇസ്കോ സമജ്നേ കേ ലിയേ വ്യക്തി കോ ബഹുത് ബഡാ തത്വജ്ഞാനി ഹോനാ ചാഹിയേ. ഐസി ബാത് നഹീ, കോയി സാധാരണ വ്യക്തി ഭീ ഇസ്കോ സമജ് ലേതാ ഹൈ. ആക്ച്വലി ഭഗവാൻ ഇസ് ജഗത് കീ കേ വർണ്ണൻ കേ ബാരേ മേ കഹതേ ഹുവേ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അനിത്യം അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം. ഐസെ ഗീതാ മേ അലഗ് അലഗ് ജഗഹ പേ, യു നോ, ആഠവേ അധ്യായ മേ ഔർ ഫിർ നൌവേ അധ്യായ മേ ഭീ ജബ് ബോൾത്തെ ഹൈ ഇസ് ജഗത് കേ ബാരേ മേ കി യേ ജഗത് തോ ദുഃഖാലയ ഹൈ അശാശ്വത ഹൈ തോ വോ തോ സഹജ ബോൽ ദേതേ ഹൈ. ഐസേ നഹീ കി വഹാ പേ ഭൗതിക ജഗത് കേ വിഷയ കേ ബാരേ മേ വർണ്ണൻ കർ രഹേ. മുദ്ദാ തോ കോയി ഔർ ഹൈ ലേക്കിൻ വോ ബോൽ ദേതേ ഹൈ കി ഇസ് ദുഃഖാലയ അശാശ്വത ജഗത് മേ വോ വാപസ് നഹീ ആതേ. മത്ലബ് യേ തോ ജനറൽ നോലേജ് ഹൈ, സാമാന്യ ജ്ഞാന ഹൈ, ഹരേക് കോ പതാ ഹൈ. യേ മുദ്ദാ വഹാ പേ ബോൽനാ നഹീ ഹൈ ഭഗവാൻ കോ. ഭഗവാൻ കോ തോ കുഛ ഔർ ബോൽനാ ഹൈ. ലേക്കിൻ ഐസാ വ്യക്തി ജോ മേരേ ഭക്തി പ്രോസസ് കോ വിധി കോ സ്വീകാർ കർത്താ ഹൈ വോ ഭൗതിക ജഗത് മേ ആതാ നഹീ ഹൈ ജോ കി ദുഃഖാലയ ഹൈ, ശാശ്വത ഹൈ, സബ്കോ പതാ ഹൈ ഉസ്മേ ക്യാ ഹൈ. ഇസ് പ്രകാർ സേ ഐസേ ബോൽതേ ഹൈ. തോ ഹം ലോഗ് ദേഖ്തേ ഹൈ കി ഇസ് ജഗത് മേ ഹമാരേ ജീവൻ മേ ഹർ സ്തർ പേ ലഡായി, ഹർ സ്തർ പേ സംഘർഷ ജോ ഹൈ വോ ചൽതാ രഹതാ ഹൈ ഇസ് ജഗത് മേ. ഭൗതിക ജഗത് മേ ഹം ലോഗ് ദേഖ്തേ ഹൈ വ്യക്തി വ്യക്തി കേ സാഥ്, ജാതി ജാതി കേ സാഥ്, സമാജ് കേ സാഥ്, രാഷ്ട്ര കേ സാഥ്, യഹാ തക് കി വ്യക്തി കേ അപ്നേ ഹൃദയ മേ ഭീ സംഘർഷ ചൽതാ രഹതാ ഹൈ. തോ ബാഹർ ഔർ അന്തർ ദോനോ ജഗഹ സംഘർഷ ജോ ഹൈ ഭൗതിക ജഗത് മേ ചൽതാ രഹതാ ഹൈ. ഹമാരേ ഹൃദയ മേ ഭീ കുഛ യു നോ സംഘർഷ ചൽതാ രഹതാ ഹൈ, ജഹാ പേ കൃഷ്ണ ഭാവനാമൃത കേ വിരുദ്ധ ഔർ കൃഷ്ണ ഭാവനാമൃത കേ പക്ഷ മേ ഐസേ ഹമാരീ ചേതനാ കാ ജോ സംഘർഷ ഹൈ വോ ചൽതാ രഹതാ ഹൈ. തോ യേ ഭൗതിക ജഗത് കാ സ്വഭാവ ഹൈ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കോ ഏക് ബാർ ഏക് റിപ്പോർട്ടർ നേ കഹാ കി സ്വാമി ജി യേ ഭൗതിക ജഗത് ജോ ഹൈ ഉസ്കോ ഡാർവിൻ നേ വർണ്ണൻ കർത്തേ ഹുവേ കഹാ കി സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. ജസേ ജംഗൽ ഹോതാ ഹൈ തോ ജംഗൽ മേ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ജോ സബ്സേ താകത്വർ പശു ഹൈ വഹി ജീതേഗാ, വഹി ബച്ചേഗാ. तो प्रभुपाद ने कहा इन मटेरियल वर्ल्ड इवन द फिटेस्ट डोंट सर्वाइव. उन्होंने कहा भौतिक जगत में जो फिट है, एकदम फिट, जो ताकतवर है, वो भी नहीं सर्वाइव होता है. वो भी जो है समय के संघर्ष में ये खत्म हो जाता है. अन्य एक रिपोर्टर एक बार प्रभुपाद जी को कहे कि स्वामी जी आपको इसके बारे में क्या कहना है. किसके बारे में? कि ये जो डेथ रेट है, ये मरण मृत्यु का जो मापदंड है, मृत्यु का प्रमाण जो है बहुत बढ़ रहा है इन दिनों. प्रभुपाद ने कहा कहां बढ़ रहा है? मृत्यु का जो मापदंड है, प्रमाण है, डेथ रेट इज कॉन्स्टेंट 100%, सर्वत्र 100% है. डेथ रेट जो है 100% है, कहीं बढ़ नहीं रहा है, वो कॉन्स्टेंट है हर जगह पे. तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत में हम लोग देखते हैं ये जो संघर्ष चल रहा है, उस भौतिक जगत के संघर्ष में फिर भक्त हो या अभक्त हो, हम सब जो है उस संघर्ष के साथ जूझ रहे. लेकिन इस संघर्ष के साथ जूझते हुए श्रील प्रहलाद महाराज जो है हमें सप्तम स्कंद में भागवतम के ये बहुत अच्छा बताते हैं कि वो कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी उसके एक तात्पर्य में बताते हैं कि जब हमारे स्वस्थ शरीर और मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम जब इस संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत के प्रयोजन को भूल नहीं जाना चाहिए. ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवम आश्रितः शरीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम. भवम आश्रितः, इस जगत में रहते हुए और हम हमारे लड़ाइयां लड़ते हुए, ततो यतेत कुशलः क्षेमाय, एक कुशल व्यक्ति को चाहिए कि जो क्षेम है, हमारा परम गंतव्य है जीवन का, उसको ना भूले. नहीं तो कभी कभी हम लोग भौतिक संघर्ष की लड़ाई में इतने जून जाते सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, ये वो, कि जीवन का प्रयोजन क्या है उसको ही भूल जाते. तो ये नहीं होना चाहिए. शारीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम, क्योंकि हमारे शरीर की, बुद्धि की, हमारा जो मन है उसकी लड़ने की क्षमता जो है वो मर्यादित है. तो स्वस्थ मन से, स्वस्थ बुद्धि से, स्वस्थ शरीर से जिस प्रकार से भक्ति में प्रगति कर पाते हैं, बहुत जरूरी है कि उस वक्त भक्ति के इस प्रयोजन को न भूलते हुए उस मार्ग में बढ़ने का प्रयास करें. नहीं तो जीवन के संघर्ष में लड़ते हुए एक दिन देखेंगे कि भगवान के सेवा और प्रयोजन करने के लिए कुछ एनर्जी ही बची नहीं, सब भौतिक संघर्ष के लड़ाई में ही खत्म हो गई. तो इस प्रकार से, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस मुख्य ध्येय को नहीं भूलना चाहिए. जैसे हाल ही में मैं वृंदावन में था, कल ही वृंदावन में था, तो फिर वृंदावन से यहां आना था, तो स्वाभाविक है कि यात्रा में हम लोग जर्नी प्रसाद जो है वो लेते हैं. लेकिन जर्नी प्रसाद मतलब यात्रा में कुछ खाने के लिए प्रसाद जो है वो ले लेते हैं. तो फिर यात्रा में प्रसाद, और उसमें तो हम लोग मतलब अलग अलग उसके फ्लेवर्स भी है यात्रा प्रसाद के. तो जैसे तैसे पूरे अच्छे परिश्रम से बनाया हुआ प्रसाद मैं भूल गया, उसको लेके आना भूल गया. तो फिर अभी यात्रा तो करनी है और प्रसाद ही नहीं है, तो बहुत प्रयास कर रहा था कैसे तो भी प्रसाद मिल जाए कहीं से, तो आते आते दिल्ली से अरेंज हो जाए, यहां से कहीं से तो अरेंज हो जाए ऐसे. लेकिन उस सारे प्रयास में बड़ा समय जाने लगा, वो एडजस्ट नहीं हो रहा था. तो फिर एक समय पर निर्धारित करना पड़ा कि अभी अगर इससे ज्यादा इस प्रयास करेंगे प्रसाद के लिए, ये भक्त आ रहा है यहां से बना के, यहां पे वेट कीजिए, तो इतने समय में लेके आएगा. तो दिख गया कि अगर उतना वेट किया तो ट्रेन ही चली जाएगी ऐसे. तो प्रसाद तो महत्वपूर्ण है, मानते हैं, उससे कुछ असुविधा होगी अगर प्रसाद नहीं होगा तो, लेकिन अगर ट्रेन ही चली जाएगी तो वो बहुत बड़ी असुविधा है कि नहीं? वो बहुत बड़ी असुविधा है. ट्रेन ही चली गई तो क्या होगा, अभी दूसरे दिन जाना है, फिर सब नया बुक करो, हो सकता है यहाँ पे सारे प्रोग्राम, दो दो तीन तीन प्रोग्राम है, सब कैंसिल करने पड़ेंगे. तो जीवन में असुविधा के साथ संघर्ष करते हुए जो सबसे भारी असुविधा है वो होनी नहीं चाहिए हमारे जीवन. तो वो जो है असुविधा, हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, कि जो हमारे जीवन का प्रयोजन है कृष्ण भावना भावित होना, तो हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाते हुए इतना नहीं उलझ जाना चाहिए कि जो मूल हमारे जीवन का प्रयोजन है कृष्ण भावना भावित होना, उसके लिए ही समय बचा नहीं, और इतना समय और इतनी शक्ति का ह्रास हो गया कि अभी उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। एकदम पूरा जीवन संघर्ष में चला गया, किसमें सारे भौतिक समस्याओं को सुलझाने में सुलझाने में सुलझाने में इतना उलझ गए कि अभी देख रहे अभी तो ट्रेन या फ्लाइट को 5 मिनट ही बाकी है, बाप रे अभी खत्म, अभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो वैसे होना नहीं चाहिए। हितोपदेश एक बड़ा सुंदर चीज कहता है, श्वा मुक्तम अस्त्रम दशति इति कोपात क्षेप्तारम उद्दिश्य हिनस्ति सिंह। दो प्रकार के प्राणी बताए गए, एक है सिंह और एक है श्वा, एक है कुत्ता और एक है सिंह। तो जब कुत्ते को कोई शिकारी बाण मारता है तो कुत्ता क्या करता है, मुक्तम अस्त्रम दशति इति कोपात, तो उसको बाण मार दिया कुत्ते को तो बहुत गुस्सा हो जाता है, अरे किसने बाण मारा कर, और फिर वो बाण जो है उस बाण को निकाल के कैसे तो भी उसको चबाता है, उसको तोड़ने का प्रयास करता है, वो बाण जो है वो उसके लिए वेदना का कारण है, व्यथा का कारण है, तो बाण के ऊपर नाचेगा, बाण को तोड़ेगा, मुंह में डालेगा, तोड़ने का प्रयास करेगा, ये कुत्ते का स्वभाव होता है। लेकिन जब सिंह को कोई बाण मारता है तो सिंह क्या करता है, क्षेप्तारम उद्दिश्य, वो जिसने बाण मारा, बाण छोड़ दो बाण किसने मारा, उस बाण मारने वाले को देखता है, क्षेप्तारम उद्दिश्य हिनस्ति सिंह, और उस पर आक्रमण करता है। यह सिंह का स्वभाव है। कुत्ता किसका क्या करता है, बाण के ऊपर, वो बाण पे ही, बाण ये बाण परेशानी है, लेकिन सिंह को पता है ये बाण परेशानी नहीं, बाण कहां से आया, तो वो उस इस व्यक्ति को देखता है, शिकारी को, और उस पर जाके आक्रमण करता है। तो हितोपदेशित कहता है कि उसी प्रकार से हमारे जीवन में समस्या रूपी बाण आके लग रहे बहुत सारे, तो ठीक है उसकी समस्या की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, हो सकता है यहां पे सिंह उस बाण को भी तोड़ दे, फेंक दे मरोड़ के, लेकिन वो उस शिकारी को नहीं छोड़ने वाला है कि नहीं। तो इसलिए उसी प्रकार से जीवन में हम समस्याओं को तो सुलझाते हैं, वो जरूरी है, ऐसे नहीं मैं कह रहा कि सारा जीवन में जो भी भौतिक समस्याएं हैं उसको तो पूरा दुर्लक्ष करना चाहिए, ये मुद्दा नहीं है, वो तो करना ही चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे जीवन में हम भक्ति के लिए अनुकूल जो भी है उसका स्वीकार करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जो शिकारी है, मतलब मूल जो इस जगत का स्वभाव है, उस स्वभाव को लांघने का प्रयास करना चाहिए। दुर्लंघ्य, ये जो भीमम कहा है, भीमम अदभ्र सौरुद्धा आज के श्लोक में, भौतिक जो संसार है वो लांघने के लिए बड़ा कठिन है, तो उसको लांघने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए जो चेतना है उस चेतना को बना देना चाहिए, नहीं तो फिर संघर्ष 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 सॉल्यूशन मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्यूशन 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 इसमें ही पूरे उलझ जाएंगे, इतने उलझ जाएंगे कि वो जो मेन सॉल्यूशन है इस पूरे भवार्णव का, इस संसार सागर का, उसको ही भूल गए। कृष्ण भक्ति में हमारी चेतना जो है उसको ऊपर उठाना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। ऐसे तो ये भौतिक जगत का स्वभाव है, इसमें समस्याएं आती रहेगी, व्यक्ति में, संबंधों में, घटनाओं में, हर जगह हम लोग देखते हैं समस्याएं आती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो कभी तो बहुत आदर्श स्थिति होगी भक्ति करने के लिए, तब मैं भक्ति करूंगा, ये बस बस है कि नहीं, हर एक को लगता है ऐसा कि बस इतना हो जाए ना प्रभु जी बढ़िया से भक्ति होगी, मैं बस इतना हो जाए ना बढ़िया, और ऐसा जीवन भर कहते हैं हम लोग है कि नहीं, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। तो बड़ा जरूरी है कि हमें उस चेतना को साथ में रखते हुए, उसको प्रयास करते हुए, इस भौतिक जीवन को पार करने की चेतना का प्रयास करते हुए हमारे जीवन को जीना चाहिए। एक सामाजिक वक्ता कहते हैं कि न्यूज क्या है इस जगत में, तो न्यूज क्या है, पुरानी चीजें जब नए लोगों के साथ होती है तो उसको न्यूज कहते हैं, वही चीज होती है एक्चुअली, पुरानी चीज है, चीज पुरानी है, जो भी कुछ हो रहा है अलग 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 प्रकार की न्यूज होती है, लेकिन वो नए लोगों के साथ होती है, न्यू पीपल, सो इसलिए न्यूज इस प्रकार से। तो भौतिक जगत में एक्चुअली नया नहीं है कुछ, वही चीज है पुरानी, वही होती रहती है, वही होती रहती है, वही होती रहती है, बस नए नए लोगों के साथ रहती है, तो लोगों को लगता है अरे अच्छा इसके साथ हुआ, अच्छा इसके साथ, इसके भी साथ हुआ इस प्रकार से, तो वही न्यूज वो चलती रहती है एकदम इस प्रकार से। तो इसलिए इस संघर्ष को हमारे जीवन में जारी रखते हुए मूल जीवन का जो संघर्ष है उसको उसमें विजय प्राप्त कराने के लिए हमें हमारे आचार्य जो है वो अपनी विरासत देके जाते हैं, जैसे इस श्लोक में कहा जाता है। इस श्लोक में स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन, ये बता रहे कि आचार्य लोग या भगवान के भक्त लोग जो है वो स्वयं समुत्तीर्य इस संसार रूपी सागर को खुद पार कर देते हैं, और भवार्णवम भीमम अदभ्र सौरुधा, उस संसार रूपी सागर के गुण बताए गए हैं, भीमम बड़ा अकराल बड़ा विकराल है ये, और इसके ऊपर लांघना बड़ा कठिन माना गया है, लेकिन वो उसको लांघ के कैसे लांघते हैं ये पिछले श्लोक में बताया है। महत्पाद पोते न कहा गया है, भगवान के चरण रूपी नौका को ग्रहण करके वो इस संसार को पार कर लेते हैं। मतलब क्या, भगवान के चरणों के चरण कमलों के नाम रूप गुण लीला का ध्यान करना, इसके ऊपर श्रवण कीर्तन आदि करना, इससे इस संसार रूपी सागर को प्राप्त कर लेते हैं, उसको पार कर लेते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कोई नाव पार कर लेगा, एक नाव से संसार का सागर पार कर लेगा, कोई इस जगत में भी देखिए सागर पार कर लेता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि सागर पार करने के बाद नाव तो जो है वो चली जाएगी ना किनारे पे, लेकिन ये नाव बड़ी विशेष है। आचार्य लोग वगैरह इस नाव को लेके संसार को पार करके दूसरी ओर सागर के चले जाते हैं, लेकिन नाव इधर ही रह जाती, नाव इधर छोड़ के चले जाते हैं वो जो है, ताकि अन्य लोग जो है इस नाव को ग्रहण करके इस संसार सागर से पार हो जाए। तो देखिए बहुत बार अगर कोई सागर में है और अगर कम साधन है, मानिए जैसे टाइटैनिक में भी हुआ था उस एपिसोड में, तो पूरा जहाज तो डूब गया, तो कितनी लाइफ बोट्स थी, बहुत कम थी है कि नहीं, तो इसलिए उस लाइफ बोट यानी प्रैक्टिकली वो लाइफ बोट यानी क्या है, वो नौका यानी उसके जीवन जीवन के बराबर है, वो जीवन का साधन है उसके। तो ऐसी नौका पर चढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं कि भयंकर वहां पे फिर उद्रेक हो जाता है, यहां तक कि लोग तो एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार है, क्योंकि पता है वो नौका यानी मुझे इस सागर से पार करा देगी ऐसे। तो इसीलिए ऐसी नौका को लेके कोई पार कर रहा है और नौका अन्यों के लिए भी छोड़ रहा है, तो आप देखिए वो बहुत एक बहुत बड़ा कृपा का भाव है उसके अंतर्गत। तो ये नौका क्या है, इसका जैसे प्रभुपाद ने भी ऊहापोह किया यहां पे कि भक्ति मार्ग संप्रदाय, भक्ति मार्ग के संप्रदाय में ये जो विधि है भक्ति का, ये जो भगवान के प्रति ज्ञान है, इसको नौका कहा गया है। तो आचार्य स्वयं इस ज्ञान को भक्ति के विधि को अपने जीवन में स्वीकार करके पार तो कर ही लेते हैं, लेकिन
गोपी जन बल्लभ किरित बर धारी
के इस भौतिक जगत के परे जा सकते हैं। तो ये विशेषता है उस नौका की। दक्षिण भारत में एक बड़े महान भक्त हुए जिनका नाम था नारायण भट्टतिरी। तो ये जो नारायण भट्टतिरी थे, बड़े विशेष कवि थे संस्कृत के, महापंडित कवियों में माने गए हैं नारायण भट्टतिरी, और बड़े अपने गुरु के प्रति बड़े समर्पण का भाव भी रखते थे।
किशोर नंदना ब्रज जन रंजना यमुन चेरा बनचारी
हो गए कि उस पीड़ा के कारण उनको कुछ भी करने को नहीं हो रहा था। तो नारायण भट्टतिरी तो बहुत समर्पित थे अपने गुरु के लिए, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर आप चाहते हो, अगर आपको ठीक लगता है तो मैं चाहूंगा कि मेरे गुरु की जो व्यथा है रोग है वो मेरे ऊपर आ जाए, क्योंकि मैं तो बहुत साधारण जीव हूं, लेकिन मेरे गुरु तो इस जगत के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इस जगत के कल्याण कर रहे हैं वो, इस जगत में इतना सारे लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो उनका जो पीड़ा है, व्यथा है, रोग है, वो मुझे आ जाए, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। केरल में थे ये, केरल प्रांत में। तो अब जब ऐसा उन्होंने प्रार्थना की तो वास्तविक वैसा हो गया। तो गुरु तो पूरे ठीक हो गए अच्छे से, लेकिन ये जो नारायण भट्टाचार्य थे उनको रूमेटिज्म हो गया पूरा। तो ये पूरे पीड़ित हो गए व्यथा से एकदम, और बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे करके। तो उनके इस समर्पण के भाव को देखकर एक वैष्णव ने कहा कि ये रूमेटिज्म आपको जो हुआ है, रोग हुआ है, इसका एक समाधान है। तो उन्होंने कहा क्या समाधान है? वैसे तो उन्होंने कहा मुझे इससे कुछ दुख नहीं हो रहा कि ये क्यों मुझे रोग हुआ करके, तब तो मांग लिया, लेकिन अभी समझ रहा हूं बड़ी परेशानी है, ऐसा नहीं उनका भाव था। तो वो बोले मुझे तो परेशानी नहीं है, लेकिन आप समाधान कह रहे हो, भगवान की सेवा उनसे हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा क्या समाधान है? तो वैष्णव ने कहा आप मछली खाना प्रारंभ करो, मछली से शुरू करो और फिर एक एक करके बाकी सब खाओ। उन्होंने सुना प्रारंभ मछली से करो एकदम, उन्होंने कहा। तो ये उन्होंने सुना वैष्णव कैसे बोल रहे हैं ऐसे, मछली से शुरू करो, ये ऐसे कैसे बोल रहे? लेकिन ये तो परम वैष्णव थे जिन्होंने कहा ये। तो फिर जाके उन्होंने रात में विचार किया इस चीज पे, मछली से प्रारंभ करो और फिर बाकी एक एक करके सब खाओ। तो उनको भगवान की कृपा से पूरा प्रकाश हो गया, अच्छा मैं एक कवि हूं और संस्कृत का बड़ा विद्वान हूं, भगवान का गुणगान रचता हूं। उन्होंने कहा कि भगवान मत्स्यावतार से प्रारंभ करो, और मत्स्यावतार से प्रारंभ करके फिर शुकर, नरसिम्हा और ये जो सब है सब खाओ। मतलब इन सब का गुणगान जो है अपने कवित्व के द्वारा करो और ऐसा ग्रंथ रचो। तो मछली से प्रारंभ करो मतलब मछली मत खाओ, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ने को नहीं बोल रहे, मांसाहार पहला नहीं, मछली से प्रारंभ करो मतलब मत्स्यावतार के गुणगान से प्रारंभ करो, और फिर उसके बाद शुकर का गुणगान करो, उसके बाद अन्य अन्य जो भी भगवान के अवतार है उनका गुणगान करो। तो जब इस चीज का प्रकाश हुआ तो उन्होंने फिर अपने उस कवित्व के द्वारा एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा, श्रीमद् भागवतम के आधार के ऊपर, श्रीमद् भागवत की कथाओं को लेके, और जिस ग्रंथ को श्रीमद् नारायणियम कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने 1000 श्लोक लिखे श्री भगवान के गुणगान में, और सारे अवतारों का वर्णन जो है उन्होंने किया है एकदम श्रीमद् भागवतम के रूप में, और अंत में दशम स्कंद के भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का समरी रूप में बढ़िया सुंदर वर्णन किया है एकदम, मतलब एकदम भागवतम का कॉपी है लेकिन 1000 श्लोकों में, 18000 श्लोक का भागवतम कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड जो कि 1000 श्लोकों में इस प्रकार से। तो जब उन्होंने ये किया और इस उनके कवित्व का भगवान श्री गुरुवायूरप्पन जो केरला में है उनके सामने जाके इस ग्रंथ का उन्होंने प्रतिपादन किया, उसको वर्णन किया, भगवान के गुणगान में उसको प्रस्तुत किया, तो भगवान ने उनके उस कवित्व से इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान ने उनका रूमेटिज्म भी क्योर कर दिया। हर दिन जो है 10-10 श्लोक गाते थे वो, तो ऐसे 10-10 श्लोक गाते हुए 100वें दिन वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए ऐसे। लेकिन वो जो नारायण भट्टाचार्य है वो अपने उस ग्रंथ में लिखते हैं कि वास्तविक जो रोग है, भगवान ने तो मुझे इस तथाकथित रोग से भी पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि हर 10 श्लोक के साथ भगवान का गुणगान करते हुए करते हुए करते हुए भगवान, मैं ये समझ रहा हूं कि आपने 100वें दिन भवरोग को क्लियर कर दिया। ये जो मेरे हृदय में इच्छा थी भौतिक भोगों की, भौतिक संघर्ष की, मतलब भौतिक जगत में भोक्ता बनने की और महान बनने की, उस भावना को मैंने देखा कि जैसे ये शब्दांजलि आपके चरणों में अर्पण हुई 100वें दिन, वैसे वो भावना मेरे हृदय से चली गई पूरी, और पूरा पूरा भगवान के भक्ति में समर्पित हो गया। तो इस प्रकार का हम लोग देखते हैं कि कृष्ण कथा का, कृष्ण भगवान के भजन का गुण है। तो भगवान जो है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो देखिए इस जगत में बहुत चीजें होती रहेगी, ये हुआ वो हुआ, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये समस्या अपनी समस्या दूसरे की समस्या, सब समस्या ही चल रही है। लेकिन हमें इस जगत में कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार। इस अंधकार में लड़ते हुए सबसे पहले कृष्ण रूपी सूर्य को द्युमन यहां पे कहा है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जब कोई रूम में अंधकार होता है तो अंधकार जब होता है, अंधेरा हो गया मानिए, सडनली कुछ दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम लोग किस चीज को ढूंढते हैं? सबसे पहले देखते हैं टॉर्च या स्विच या मोबाइल, जो भी कुछ है, प्रकाश कहां है। ऐसे वो अंधकार क्यों है, अंधकार को पंचिंग मारते नहीं है, क्या है अंधकार, किधर से आया अंधकार, ये अंधकार को मारो मुक्के दो चार वगैरह, ऐसे नहीं। अंधकार को मारने से कुछ नहीं होगा, सबसे पहले उल्टा मारने से पता नहीं, कोई आप खंबे को मार दोगे और आपके हाथ को लगेगा या सिर को लगेगा। ऐसे तो अंधकार में ऐसे मुक्के मारना ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले आप ढूंढिए प्रकाश का सोर्स, सूर्य जो प्रकाश है कहां से आ सकता है, तब जब चीजें साफ दिखने लगेगी तो फिर हम लोग हर चीज को समझ सकते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन के संघर्ष में जहां जहां हम लोग अंधकार में उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उसको बगैर ठीक समझे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम लोग देखते हैं कि उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है, अंधकार ही अंधकार बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता है। तो हमें चाहिए कि कृष्ण सूर्य समय, यू नो, कृष्ण रूपी जो उनकी नाम रूप गुण लीला सेवा है, इस सूर्य को ग्रहण करके हमारे जीवन में सबसे पहले उसको ग्रहण करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस श्लोक के तात्पर्य में और एक चीज, इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में और एक चीज बताई है कि देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि कृष्ण रूपी नौका को ग्रहण करके वैष्णव लोग इस जगत को पार कर लेते हैं, तो फिर वो जो सागर है, वो सागर जो कि भव सागर है, वो क्या बन जाता है? गोष्पदी। वो जो भवार्णव है, संसार का सागर, वो बन जाता है गोष्पदी, मतलब इतना पानी जो कि एक बछड़े के खूर में बैठ जाए, ऐसे वैसे कहा गया है, संसार गोष्पदी बन जाता है। तो ऐसे क्यों कहा है कि भगवान के चरणों को स्वीकार करके वो पानी पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हो रहा? संसार रूपी सागर है, भगवान के चरण कमलों को स्वीकार करके वो पानी जो है भगवान ने क्या बना दिया, बछड़े के खूर में जितना है उतना। ऐसे क्यों नहीं बोला कि पूरा पानी खत्म कर दिया, संसार रूपी भौतिक इच्छाओं का पानी जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, नहीं थोड़ा सा पानी बच गया है कि नहीं, वो बछड़े के खूर में जो है जितना, ऐसे इस बात को समझ रहे ना, है कि नहीं? ऐसा क्यों बोल रहा है शास्त्र की ऐसा पानी बना देते हैं, इतना इतना सहज बना देते हैं कि बस बछड़े की खोल, मतलब कुछ तो पानी बचा है कि नहीं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये देते, एक्सप्लेनेशन, वो कहते हैं बछड़े के खूर में जो पानी है ना, वो पानी बहुत शुभ माना गया है, वो बहुत पावनीय होता है पानी। कई सारे कर्मों में बछड़े के खूर में जो पानी है, उस पानी को लेके उसको बहुत पावनीय, उसको पावन जो है माना गया है, उसका यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो वो कहते हैं गोष्पदी पावनीयम श्लाघनीयम च भवेत, एकदम पावनीय है वो, श्लाघनीय प्रशंसनीय है जो बच्चे के खूर में पानी है, बछड़े के खूर में। क्यों? वो कहते हैं भक्त के हृदय में हालांकि भगवान के चरण कमलों को स्वीकार करके इस जगत को भी पार कर लेता है वो, ये भाव हमेशा रहता है कि मेरे हृदय से जो कंटेमिनेशन है, जो भौतिक इच्छा है, वो गई नहीं, ऐसा ही सोचता है वो हमेशा। भले ही पूरी तरह से भी शुद्ध हो जाए, उसको ऐसे लगता है कि नहीं, ये चीज तो मेरे हृदय में रह ही गई, ये चीज तो रह ही गई ऐसे। तो वो जो थोड़ी सी भावना है कि मेरे हृदय में भौतिक इच्छाओं का प्रभाव पूरी तरह से गया नहीं, वो कहते हैं अन्येषां भक्त अभिमानी भक्तमानीनां अभिमान रोग हरः। तो जब ऐसे महान भक्त की जिन्होंने पूरे भगवान के चरण कमलों को स्वीकार करके भी वो सोचते हैं कि मेरा पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ, मैं अभी भी अशुद्ध हूं, तो फिर अन्य शाम जो बाकी लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े चढ़े भक्त है, मैं तो बहुत भक्ति में प्रगति कर लिया है कि नहीं, अभी प्रेम तो ज्यादा दूर लग नहीं रहा ऐसे जो भाव तक तो पहुंच गए हैं, शायद प्रेम भी मिल ही जाएगा। तो ऐसे अन्येषां भक्त मानी नाम, जो ऐसे स्वयं को भक्त मानने वाले बड़े व्यक्ति है जो कि अहंकार का अनुभव करते हैं, अभिमान रोग हरह, तो ये भक्त के हृदय में जो ये फीलिंग रहती है कि मेरे हृदय से ये शुद्धिकरण नहीं हुआ है, उसके कारण ये जो भक्तमानी लोग हैं वो सोचते हैं, अरे ये इतना महान भक्त हो के ऐसा सोच रहा है, तो फिर शायद मैंने भी थोड़ा, मैं जो सोच रहा हूं बहुत प्रगति कर लिया भक्ति में, रिव्यू करना चाहिए थोड़ा इसको, सही में ऐसा है क्या, शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये महान भक्त भी ऐसा प्रार्थना कर रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसी प्रार्थना करते हैं कि नहीं, हमारा जीवन सदा पापे रत, या नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, लोचन दास ठाकुर कहते हैं इस प्रकार से, यू नो वासुर हिया पाषाण दिया, यू नो वासुदेव घोष कहते हैं। तो ये लोग जब इस प्रकार की प्रार्थना कहते हैं, करते हैं, तो वो गोष्पदी के समान है, वो जो भावना है कि मेरा जीवन तो पाप से भरा है, मेरा अभी तक शुद्धिकरण नहीं हुआ, इतना जीवन चला गया तो भी मैं जो है भगवान के प्रति रति प्राप्त नहीं कर पाया, तो ये भाव जो है ये गोष्पदी के जैसा है, मतलब वो बच्चे के खूर में जो पानी है उसके जैसा है। वास्तविक तो भगवान ने खत्म कर दिया है एक्चुअली सब कुछ, उनको वो जो तथाकथित कंटामिनेशन है उसको खत्म कर दिया है, लेकिन तो भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा भाव रहता है, जिससे अन्य जो लोग है उनको अभिमान रोग हर, उनका अभिमान जो है वो चला जाएगा ऐसे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इस संप्रदाय रूपी विरासत को हम स्वीकार करें, हमें जो आचार्यों ने दिए है, ग्रंथ दिए है, खास करके आचार्यों की विरासत में सबसे महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी कहते हैं ये भक्ति के विधि का ज्ञान, भक्ति मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला सेवा संबंधी जो आचार्य ग्रंथ दिए है, उन ग्रंथों को स्वीकार करना चाहिए, वो जो है उस नौका को स्वीकार करने के जैसा है, उस विधि को स्वीकार करने जैसा है। तो यही श्रीमद् भागवतम की एक्चुअली हम देखेंगे तो उपलब्धि है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरयेत, हम कहते हैं रोज, है कि नहीं, भगवान नर नारायण को नमस्कार करके, सरस्वती देवी को नमस्कार करके, व्यास जी को नमस्कार करके, फिर जयम उदीरयेत, जय बोलना चाहिए, लिटरली जय बोलना चाहिए, तो क्या इसका क्या अर्थ है, जय बोलना चाहिए ऐसे। तो एक तो लिटरली जय यानी ये जो महाभारत और पुराण ये सारा जो सेक्शन है इसको जय कहा गया है शास्त्र में, पूरे महाभारत को और पुराणों के इस समूचे समूह को जय कहा गया है। क्यों जय कहा गया है, उसका नाम है जय। तो ततो जयम उदीरयेत, हम लोग जब कहते हैं तो देखिए ये प्रार्थना पुराणों में आएगी, महाभारत में आएगी, हर पुराण में ये प्रार्थना आती है ततो जयम उदीरयेत। क्यों, क्योंकि जयति अनेन संसारम इति जय, जिसके द्वारा इस संसार को हम लोग जीत लेते हैं उसको कहते हैं जय। तो ततो जयम उदीरयेत इसका अर्थ है कि अब ऐसे ग्रंथ को बोलना प्रारंभ कीजिए, ऐसे ग्रंथ को बोलिए जो कि इस संसार रूपी सागर से आपको जय दिला दे, तो इसलिए जय बोलते हैं हम लोग। ततो जयम उदीरयेत जयति संसारम अनेन इति जय। तो श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथ जो है इसका ये प्रमुख उद्देश्य रहा है। बाकी अन्यान्य कर्मकांडी ग्रंथ में हो सकता है जीवन के बाकी पुरुषार्थ बोले गए, लेकिन भागवतम में प्रमुख है कि आपको भागवतम ऐसी लीलाएं ऐसी स्टोरीज दिखाएगा जिसमें जीवन से संघर्ष तो दिखाया गया है, लेकिन सबसे प्रमुख चीज है कि वो जो जय गुण है, मतलब इस संसार के परे कैसे जाना है, लांगना कैसे है इसको, ये चीज बताई गई है। भागवतम का आप कॉन्टेक्स्ट भी देखते हो तो कैसा है, परीक्षित महाराज है जिनको 7 दिन में मृत्यु प्राप्त हो जाएगी ऐसा शाप हो गया है। तो देखो कभी आपने देखा होगा मूवीज में, कुछ सिनेमा होते हैं मूवीज में ऐसे कभी कभी सिचुएशन होती है कि किसी को दुर्धर रोग हो जाता है और 7 दिन में व्यक्ति मरने वाला है। तो इस स्टोरी को दिखाते हुए सिनेमा कैसे दिखाता है, सबसे बढ़िया क्लाइमैक्स अंत जो है स्टोरी का कैसे होगा कि उसको 7 दिन में मरने ही वाला है, मरने ही वाला है, और एकदम से 7वें दिन कुछ तो होके बच गया। ये क्लाइमैक्स है ये स्टोरी का, 7 दिन पूरा लग रहा है हर एक को कि मरने वाला है हीरो, मरने वाला है हीरो, हीरो मरने वाला है, और 7वें दिन जुप करके बच गया एकदम। तो लोग बोले वाह क्या स्टोरी है, बढ़िया से एकदम लगेगा दमदार स्टोरी है, कैसे 7वें दिन बच गया। हमारा भागवत का हीरो 7वें दिन 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है और 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो देखा जाए तो ये जो स्टोरी है
स्टोरी कोई कहेगा अरे व्हाट इज द पॉइंट, 7 दिन में मृत्यु होने वाला है और 7वें दिन क्या हुआ, अमृत्यु हो गई, ये कैसे स्टोरी है इस प्रकार कुछ तो अलग होना चाहिए था, वो बच जाना चाहिए था, फिर वो थ्रिलिंग स्टोरी होगी कुछ तो ऐसे। लेकिन भागवतम बोलता है ये थ्रिलिंग नहीं है, वो 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए लेकिन वहां तक्षक आके उनको डसने के पहले ही उस मृत्यु को लांग के भगवान के धाम चले गए, ये हीरो है, ये हीरो की स्टोरी है एक्चुअली, समझ रहे आप। बाकी मृत्यु से बच गया, आज नहीं तो कल बचेगा नहीं, जाएगा ही, वो तो जाने ही वाला है कि नहीं। लेकिन जहां इस मृत्यु को पार करके भगवान के धाम चला गया, आचार्य बताते हैं परीक्षित महाराज देह त्याग करके चले गए थे, भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर रहे थे, तक्षक आके सिर्फ निर्जीव शरीर को डस रहे और जला रहे उसको, लेकिन अच्छा ये तो चले गए परीक्षित, तो वो स्टोरी है एक्चुअली, सक्सेस स्टोरी, रियल सक्सेस स्टोरी। तो भागवतम के इस पहलू को अगर हम समझेंगे, बाह्य रूप से लग सकता है अरे क्या निराशावादी स्टोरी है कि नहीं, ये 7 दिन में सम्राट मर गया इस पृथ्वी का, सम्राट लोग क्षत्रिय लोगों को हार की आदत नहीं होती है कि नहीं, परीक्षित जैसा वो भी महापराक्रमी थे, महारथी थे, उनको उन्होंने तो कली को भी परास्त कर दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर स्थिति में हम लोग देखते हैं कि भागवतम सिखा रहा है कि कैसे इस जगत की समस्याओं के परे जाना होगा, एकदम इस जगत में जीतने वाला या हारने वाला कोई भी हो अंत में हारने वाला है भौतिक बाह्य दृष्टिकोण से, लेकिन जीतेगा कौन, वो जीतेगा जो इस भौतिक संसार से ही परे जाके उस भगवान के चरण कमल को प्राप्त करे। पुराण बताते हैं कि भौतिक जगत में बहुत जीत से अहंकारी नहीं होना चाहिए, वो अहंकार जीत का ऐसा है जैसे कोई जुआरी है, बहुत बड़ा जुआरी, छटा हुआ जुआरी है, कोई मानिए लास वेगास से आया है आप बोलोगे मुझे कैसे पता नहीं, लोग क्या हमें जनरल नॉलेज बहुत देने वाले बहुत भक्त हैं कृपा कृपावश बताते रहते, प्रभु जी पता है आपको क्या चल रहा है इन दिनों, क्या चल रहा है, और सब स्टोरी बताएगी फिर बाहर क्या क्या चल रहा है ऐसे। तो एनीवे ये ऐसा जुआरी है जो लास वेगास से आया है, बड़ा जुआरी है, उसके साथ आप कुछ जुआ खेलते हुए, आप मतलब खेलना नहीं चाहिए, हम लोग नहीं कह रहे हो, लेकिन कोई अगर खेलता है और जीतता है तो खुश हो जाता है, जीत रहा है, बड़ा जुआरी हार रहा है, जीत रहा है, वो सब खेलने देता है उसको, अंत में एक पासा डालता है, फिनिश्ड, गेम ओवर, वो आगे वाला परास्त कंप्लीटली। तो वैसे पुराण कहते हैं इस जगत की समस्याओं में हम लोग जीतते हैं तो खुश हो जाते हैं, आई मेड इट इन लाइफ, मैं बना दी जीवन जो है सक्सेस, कुछ हार गए तो दुखी हो जाते हैं, अरे आई कुडंट मेक इट इन लाइफ, यू नो ये चलता रहता है। लेकिन भौतिक स्तर पे अंत में काल आके गेम ओवर, एकदम धड़ाम, सब खत्म, चलो निकलो बाहर यहां से, तो जीत ले भाई जितना है तू, बाद में तो मेरे पास ही इक्के है सब भाई जीतने वाला हूं। तो इसीलिए भौतिक जगत में ये तथाकथित जीत हार मायने नहीं रखता एक्चुअली, जितना हो सके हम प्रयास करते हैं जीवन के समस्याओं को सुलझाने का, लेकिन वास्तविक समस्याओं का सुलझाव तो है कि भगवान के धाम को प्राप्त करे और इस जगत को लांघने की चेतना बना दे, वो चेतना जो है वो अगर जरूरी वो प्राप्त कर ली तो वो सबसे बढ़िया है। तो इस चेतना को प्राप्त करने के लिए शास्त्र हमें सहायता करता है, इसलिए हम लोग शास्त्र के संपर्क में, शास्त्र के उस पठन में बहुत रुचि रखते हैं। भगवान, अभी इससे अंत करूंगा मैं, भगवान के भक्त जो है उन भक्तों की सबसे प्रमुख विशेषता है ऐसे भक्तों की कि उसमें गुणवत्ता वाली कृष्ण कथा जो है वो होनी चाहिए, क्वालिटी कृष्ण कथा हैपन्स इन अ गुड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि ध्रुव महाराज भी जब भगवान प्रसन्न हुए उनसे और प्रार्थना की, ध्रुव महाराज ने प्रसन्न होके, ध्रुव महाराज तो व्याकरण वगैरह का कुछ ज्ञान नहीं था उनको जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, तो केवल इच्छा थी भगवान का गुणगान करने की, कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन छंद क्या होता है, यू नो व्याकरण का कौन सा किस चीज से किस प्रकार से कहना चाहिए, तो भगवान ने ही केवल इच्छा देख के ब्रह्म मयेन कंबुना स्पस्पर्श, भगवान ने अपने ब्रह्ममय शंख से उनके माथे पे स्पर्श कर दिया एकदम। ब्रह्ममय क्यों बोला गया उस शंख को, उस शंख में पूरे वेदों का ज्ञान जो है वो सारगर्भित है। जैसे उन्होंने टच किया ध्रुव महाराज को, पूरे वेदों का ज्ञान हो गया। और फिर ऐसी 12 प्रार्थनाएं बोली उन्होंने, ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं है कि श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं जो 12 आदित्य है, दैदिप्यमान है आकाश में, द्वादशादित्य संकाश है, जैसे 12 आदित्य आकाश में दैदिप्यमान है, वैसे इन श्लोकों में हर श्लोक जो है दैदिप्यमान है इस प्रकार से। तो उस श्लोक में अपनी स्वयं की इच्छा बताते हुए वो कहते हैं, भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसा उल्बनम उर्व्यसनम भवाब्धिम नेशे भवद गुण कथामृत पानमत्त। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे भक्तों का संग प्राप्त होवे जो भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो, जो आपके चरणों में हमेशा भक्ति के प्रवाह में ऐसे प्रवाहमान हो जैसे सागर बढ़ रहा है नदी की ओर। और उस संघ में इस प्रकार के भक्ति को स्वीकार करते हुए वो कहते हैं, निश्चय भवत गुण कथामृत पानमत्तः। भगवान अगर कहते हैं ये बात तो ठीक है भक्तों का संग वगैरह, लेकिन वो उसका क्या होगा, जन्म मृत्यु के संसार के परे जाने का उसका चिंता नहीं तुम्हें? तो कहते हैं, साटोपम सभुजा स्फोटम आह, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते, एकदम हाथ ऊपर किए उन्होंने और दोनों भुजाओं को उठा के कहे, अरे आने दीजिए, जो भौतिक संसार है वो आने वाला, क्योंकि निश्चय मैं तो इसको तर के जाऊंगा। भवत गुण कथामृत पान मत्त, आपके गुण कथामृत में पूरी तरह मत्त होके इस संसार को मैं पार कर लूंगा सहज भक्तों के संग में। तो देखिए वो गुण है, वो जरूरी है इस संसार की समस्याओं का सुलझाने के लिए। ऐसे हमें पान मत्तह ड्रंकर्ड, थोड़ा शराबी बनना पड़ेगा। कौन सा शराबी? वो वाला शराबी नहीं है कि नहीं? कभी कभी हम लोग शराबी लोग देखते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं ये लोग जो कचरा वगैरह उठाते हैं और कचरे में ही रहते हैं 12-14 घंटा, उनका काम है वो, अच्छा काम कर रहे हैं एक्चुअली, साफ कर रहे हैं सब, लेकिन वो कचरा वगैरह इतना दुर्गंध बनी रहती है, हमेशा दुर्गंध बनी रहती है। तो मैंने एक बार उसको पूछा, वो कचरा उठाने वाले को, तुम्हें इससे परेशानी नहीं होती क्या, तुम 14-12 घंटा उसी को काम करते? तो बोला, अभी क्या बताएं, बोले हम लोग थोड़ा डालते हैं। तो मैं हैरान हो गया, अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ, बोला जब पीते हैं ना तो कुछ समझता नहीं, क्या स्मेल है, क्या है, क्या है, कर कैसे। तो जब भवत गुण कथामृत पान मत्त, तो मुझे उसकी याद आ गई। कि इस भौतिक संसार में भी बड़ी दुर्गंध है, बहुत दुर्गंध है, क्या करें, एक्चुअली है वैसी स्थिति है, हम लोग इस दुर्गंध से छूटने चाहते ऐसे, तो थोड़ा शराबी बनना पड़ेगा हमें भी। भवत गुण कथामृत पान मत्त, वो अगर मत्त हो गए ना उस भवत गुण कथामृत से, तो फिर दुर्गंध आएगी जाएगी वगैरह ठीक है। आपको पूछेगा परेशान नहीं होती क्या? नहीं, हम लोग तो थोड़ा और कुछ रस जो है उसका आस्वादन कर रहे हैं ऐसे। तो ये भागवतम जो है हमें ये बताना चाहता है, त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त है कि नहीं? प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, तुष्यंति च रमंति च, गीता वगैरह आदि सर्वत्र ये चीज बोली गई है। तो ये करना पड़ेगा, जितना इस भागवत में भक्तों के, भगवान के गुणगान में हमारी चेतना को लगाएंगे, जितना लगाएंगे उतना इस जगत की चीजों से प्रभावित नहीं होंगे और भक्ति में आगे बढ़ते हुए एकदम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। श्री राजीव गोस्वामी कहते हैं, भक्ति में एक सिद्ध जो है वो प्रीति से आगे बढ़ता है, उसको तो भगवान में प्रीति है स्वाभाविक, वो तो इतना रस प्राप्त करता है भगवान को, भगवान के गुणगान में, कि वो तो सहज आगे बढ़ता है। लेकिन एक साधक है सिद्ध प्रीति से, साधक जो है बुद्धि से आगे बढ़ता है। तो उसकी बुद्धि जो है, तो बुद्धि यानी हम लोग भौतिक बुद्धि की बात नहीं कर रहे, हम लोग गुरु साधु शास्त्र से जिसने ज्यादा सुना है वो बुद्धिमान है, जिसने वो सुना नहीं है वो फिर बहुत बुद्धिमान होते हुए भी निर्बुद्ध है, समझ रहे हो? तो इस बुद्धि के द्वारा एक साधक जो है आगे बढ़ता है इस संसार में, और जितना भगवान के इस नाम रूप गुण लीला को स्वीकारता है, उसमें मग्न रहता है, उतना ही इस जगत के तथाकथित सारे इन अच्छे गुणों से, अच्छे या बुरे गुणों से प्रभावित नहीं होगा। तो हमें जीवन की समस्याओं को सुलझाने का तो प्रयास करना चाहिए, मैं उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल भी, लेकिन आप समझे कि इसको सुलझाते हुए भी जीवन के प्रमुख जो गोल है हमारा, उसको हम लोग लेके चलते हैं, उसको साथ में याद रखते हुए उसी की ओर अग्रेसर बढ़ते हैं, है कि नहीं। यहां से आप वापस जाओगे अपने घर पे, तो हो सकता है कार में जा रहे हो, तो कभी कभी ट्रैफिक लगती है, तो ट्रैफिक के कारण अगर आप उस डेस्टिनेशन पे नहीं चले जाते हो, नहीं जा सकते हो, तो आप क्या करते हो, थोड़ा दूसरा रूट लेके चले जाते हो। तो उसी प्रकार से इस जीवन में समस्याएं आएगी और कहीं पर ट्रैफिक जो है जैम हो जाएगा ऐसे, तो प्रयास कीजिए ट्रैफिक छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है ना, थोड़ा अल्टरनेटिव रूट लेके चलिए आगे। मतलब इस जीवन में हर चीज जो है उसका सोल्यूशन मिले ना मिले, लेकिन हम लोग जो है मेन चीज है कि हम लोग उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के ऊपर ऐसे। और इसमें अंत करूंगा इससे कि यह देने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जो है हमें सारी लीला आदि प्रदान करते हैं। भवेस्मिन क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी, ऐसे लोग जो अविद्या काम और कर्म से इस जगत में क्लिश्यमानानाम बड़े क्लेश से पीड़ित है, श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन्ति केचन, ये सबसे प्रमुख कारण है भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं कि श्रवण स्मरण के लिए भक्त लोगों को कुछ विषय मिल जाए ऐसे, क्योंकि नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश है, आनंद कहां आएगा। तो आनंद जो है भगवान के श्रवण स्मरण आदि इन चीजों में आएगा, इसके लिए भगवान लीला करते हैं, ये सबसे प्रमुख कारण है। कुंती महारानी कहती है ये फाइनल कारण बोलती है इस पर्टिकुलर इस कॉन्टेक्स्ट में कि भगवान क्यों यहां पे इस जगत में आते हैं। तो ऐसी भावनाओं की परिपूर्णता के लिए भगवान जो है लीला करते हैं, और ऐसी लीलाओं से भरे है हमारे शास्त्र, हमारे आचार्यों के ग्रंथ आदि वगैरह। तो इसका हमारे जीवन में उपयोग करके, इन उपलब्धियों को स्वीकार करके हम लोग जो है भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही वास्तविक इस जीवन के सारे समस्याओं का समाधान होगा। तो यहाँ पे मैं विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे,
कृष्ण प्रभु की। आइए हम उनको तीन बार हरि बोल बोलकर धन्यवाद देंगे आज के सुंदर क्लास के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कुछ अनाउंसमेंट, आज का मराठी भगवत गीता क्लास 11:30 बजे हिज ग्रेस महायोगी प्रभु द्वारा दिया जाएगा। श्रीमद् भागवतम कॉन्टेस्ट ओरिएंटेशन फर्स्ट कैंटो 4th चैप्टर 10:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल जो है भक्तिवेदांत मॉडल स्कूल का, उधर होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए बाहर टेबल रखा गया है। आपको पता है कि पिछले साल परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की भागवत कथा नहीं हुई थी, उसका आयोजन 4 मार्च से लेकर